छठवां अध्याय भविष्य के विषय में यदा कदा उभरती आशंकाओं को दबाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे लगा कि नेपाल में कुछ तो विशेष घटेगा। पटना से मैं रेल द्वारा रक्सौल पहुंचा, जो भारत और नेपाल की सीमा के निकट के कस्बा था। एक ट्रक चालक जिसके बाल और कपड़े धूल भरी सड़कों पर चलते हुए धूमिल हो गए थे, पान से रंगे अपने दांतों को दिखाता हुआ वो मुस्कुराया। हाथ के संकेत के साथ उसने मुझे अपने ट्रेलर पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। मैंने अन्य यात्रियों के बीच अपनी जगह बना ली। उनमें कुछ पहाड़ी स्त्रियां थीं जिन्होंने लंबी एवं फिक्की पड़ी पोशाकें पहनी थीं और अपने पके बालों के ऊपर स्कार्फ बांधा हुआ था। साथ में पुराने वस्त्र पहने हुए ऐसे किसान थे जो अपनी मिमयाती बकरियों और कुड़कुड़ाते मुर्गों को साथ लिए जा रहे थे। मैं भी उन्हीं के बीच अनाज से भरी टाट की बोरियों के ऊपर बैठ गया। गड्ढों से भरी सड़क पर हिचकोले खाते हुए हम सब ऊपर चढ़ते गए। ट्रेलर के ऊपर कोई छत नहीं थी और वो इतना ठूंस ठूंस कर लादा गया था कि हम चालक कक्ष से भी ऊंचे बैठे थे। यद्यपि यात्रा न तो आरामदायक थी न ही सुरक्षित, वहां से हिमालय का विहंगम दृश्य देखते ही बनता था। जब हम और ऊंचाइयों पर पहुंचे तो चारों दिशाओं में हरे भरे पर्वत और घाटियां फैली हुई जान पड़ी। हिमाच्छादित चोटियों ने क्षितिज पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था और कभी कभी वे हमारे बिल्कुल निकट भी आ रही थी। मेरे फेफड़े ताजी पहाड़ी हवा से अपनी प्यास बुझा रहे थे और मेरी त्वचा शीतल वायु के स्पर्श से रोमांचित हो रही थी। बीच बीच में आते मानसून की तूफानी थपेड़ों से किसी को भी परेशानी नहीं होती दिख रही थी। घंटों पश्चात मध्यरात्रि के समय ट्रक ने हमें काठमांडू के ठीक बाहर उतार दिया। थका और भूखा मैं अकेले ही उमस से भरी काली रात में चलने लगा। रात के अंधेरे में निर्जन सड़कों के दोनों ओर लकड़ी के जीर्ण जीर्ण और शीर्ण घर दिख रहे थे, लेकिन एक और वस्तु ने मेरा ध्यान खींच लिया। कुछ ही दूरी पर भौंकते हुए कुत्तों की भयानक आवाज़ें सुनाई दी। बढ़ती हुई चिंता के साथ मैं अन्य साधुओं द्वारा दी चेतावनी को याद करने लगा। रात को जंगली कुत्ते झुंड बनाकर शिकार की खोज में घूमते हैं। जैसे ही उन्हें कोई शिकार मिलता है वे उसे घेर कर हमला बोल देते हैं और उसकी बोटी बोटी नोच कर लाश का नामो निशान तक नहीं छोड़ते। जैसे ही मेरे मन में वो विचार आया तभी झाग से भरे मुंह वाले एक आवारा कुत्ते ने मुझे देख लिया। सिर उठाकर चीखते हुए उसने रात के सन्नाटे को बींध लिया। कुछ ही क्षणों में दांत दिखाकर गुर्राते कुत्तों की एक टोली ने मुझ पर धावा बोल दिया। वे छह थे या आठ, मैं गिनने की स्थिति में नहीं था। मैं उनके भौंकते मुखों से टपक रहे सफ़ेद झाग के विषैले प्रभाव को समझ गया। ये जानवर पागल थे, क्रोध से उनकी आँखें निकल आई थी। पागलों की भांति निरंतर चिल्लाते हुए मुझे चीर डालने के इरादे से वे मेरे पास भागे आए। उनके सूखे शरीर से हड्डियां बाहर आ रही थीं और चमड़ी से बाल उड़ चुके थे। उनकी राक्षसी चीखों ने मुझे पथरा दिया। मुंह से झाग और विष टपकाते हुए वो मेरे पास पहुंच गए। पीछे से हमला रोकने के लिए मैंने अपनी पीठ पर घर से सटा दी और अंधेरे में प्रार्थना करने लगा, क्या करूं मैं। तभी मानो जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया हो, मुझे वो लाठी याद आई जो रामसेवक स्वामी ने मुझे दी थी। पागलों की तरह मैं उसे दाएं बाएं घुमाने लगा। कुत्तों का झुंड कुछ पीछे हटा और उन्होंने मुझसे कुछ ही दूर एक अर्धचक्र में घेरा बना लिया। जैसे ही कुत्ता आगे झपटता मैं उसकी थुथनी पर तड़ाक से स्वामी जी की लाठी मारता। अपनी पतली भुजाओं की पूरी शक्ति से मैं लाठी घुमा रहा था। वहशीपन से गुर्राते हुए एक अन्य शिकारी कुत्ता मुझ पर कूदा। मैंने पूरा जोर लगाकर उसे मारा। मेरा हर हमलावर लाठी की मार खाकर पीछे गिरता, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो फिर से छलांग लगा देता। उनके हल्ले से सुनसान रात गूंज उठी। टोली बार बार कूदकर आगे आती और मैं बार बार उन्हें मारकर पीछे करता, लेकिन मैं जितना लड़ रहा था वे अपनी घेराबंदी उतनी ही मजबूत कर रहे थे। उन्हें मेरे मांस और खून की गंध लग चुकी थी। वे समझ गए थे कि मैं थक चुका हूँ। सोचने का समय नहीं था। हर पल मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस लाठी को घुमाना था। यदि एक भी कुत्ता भेद कर आगे आ जाता तो वो झुंड आक्रमण कर एक ही क्षण में मुझे हड़प कर जाता। क्या यही मेरी किस्मत में लिखा था? कुत्ते का भोजन बनकर मरना। मेरी शक्ति क्षीण हो रही थी। जीत को पास आता देख उनका वहशीपन बढ़ गया और गुर्राहटें कान फाड़ने लगी। अंतिम वार के लिए वे पास आ गए, इतने पास कि उनकी सांसों की दुर्गंध से मैं लगभग बेहोश सा हो गया। बेचैन और हताश मैंने निस्सहाय भाव से कृपा की याचना की। मैं बुरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था और मृत्यु की कगार पर था। तभी कंधे से ऊपर देखते हुए मैंने पाया कि मेरे पीछे एक बंद दरवाज़ा था। क्या उस पर ताला लगा है? मेरे भयानक दुस्वप्न में आशा की एक किरण उभर आई। जल्दी से मैं पलटा, किवाड़ की मूठ घुमाई और धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। मैंने भीतर छलांग लगाई और उसे फटाक से बंद कर दिया। बाहर कुत्ते अपना गुस्सा दरवाजे को पीट पीट कर निकाल रहे थे। अंदर घुप अंधेरा छाया था। अचानक एक लालटेन जल उठी। उसकी रोशनी में अभी अभी नींद से जगा एक परिवार दिख रहा था। घर के पुरुष मुझे चोर समझकर आगे आए और पूछने लगे कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे उनकी भाषा नहीं आती थी। एक व्यक्ति तलवार उठाकर मुझ पर हमला करने आया। मैं कर ही क्या सकता था, सिवाय घुटनों पर गिरकर हाथ जोड़ते हुए मैंने दया की भीख मांगी। जब उसने मेरी याचनाएं सुनी तो वो नरम पड़ गया। फिर उसने अपना हाथ सीधा कर दरवाजे की ओर संकेत किया, ये मांग करते हुए कि मैं तुरंत वहां निकल जाऊं। लेकिन बाहर खूंखार कुत्तों की चिल्लाहट सुनकर वो रुक गया और समझ गया कि मेरे लिए बाहर जाना मृत्यु के मुख में जाने के समान होगा। फिर भी देर रात्रि आए इस घुसपैठिए के प्रति सशंकित था और उसने लंबे समय तक मेरी आंखों में कठोरता से देखा, मानो मेरे चरित्र और उद्देश्यों को टटोलकर जांच रहा हो। केवल अपने हावभाव से मैंने उसे आश्रय देने के लिए विनंती की। किसी प्रकार मेरी निःशब्द प्रार्थना उस तक पहुंच गई। उसने अपनी तलवार रखी और मुझे एक आसन दिया। उस क्षण से वो मुझे एक बदली हुई दृष्टि से देखने लगा, एक साधु के रूप में जो असाधारण परिस्थितियों में उनके घर को आशीष देने आया था। शेष परिवार वालों ने उसका अनुमोदन किया और मेरे लिए फल और गर्म दूध लाए, जिसे मैंने आभार मानते हुए स्वीकार किया। शेष रात मैंने उनका अतिथि बनकर काटी। रात भर कुत्ते भौंकते रहे, उनका रोष रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। एक अमरीकी कथन मुझे अनायास ही याद आ गया। हर मनुष्य के हृदय में दो कुत्ते रहते हैं, एक भला और एक बुरा। दोनों परस्पर लड़ते रहते हैं। बुरा कुत्ता हमारी निकृष्ट प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और द्वेष। भला कुत्ता हमारे दैवी गुणों का प्रतीक है, जैसे क्षमा, करुणा, आत्मनियंत्रण, उदारता, विनम्रता और बुद्धिमत्ता। हम अपने समय के सदुपयोग एवं जीवन में किए चुनावों के माध्यम से जिस भी कुत्ते को खिलाते हैं, वो कुत्ता अधिक बलवान बनकर अधिक जोर से भौंकता है एवं दूसरे कुत्ते को परास्त कर देता है। बुद्धिमत्ता से इसमें है कि हम बुरे कुत्ते को भूखा रखें, भले कुत्ते को भोजन खिलाएं। आज रात बुरे कुत्तों ने मुझे हड़पने की वासना के साथ जो आक्रमण किया था, वो मेरे अंतर्मन में चल रहे अच्छाई बुराई के संघर्ष को सजीवता से दर्शा रहा था। आराम से लेटकर मैं कृतज्ञतापूर्वक रामसेवक स्वामी के विषय में सोचने लगा। यदि उन्होंने ये लाठी मुझे न दी होती तो निश्चित ही आज रात में मारा जाता। मुझे उनकी शब्द स्मरण हो गए, कितने सत्य और भविष्य सूचक थे वे। भक्तों की कृपारूपी लाठी हमें सबसे बड़े खतरों से बचा सकती है। अगले दिन जब सब शांत हो गया और कुत्ते चले गए, मैंने उस परिवार को हार्दिक धन्यवाद दिया और एक विष्णु मंदिर के दर्शन के लिए चल दिया। वहां मैंने साधुओं के एक दल को जनकपुर का गुणगान करते सुना, जो नेपाल के मैदानी भागों में श्रीमती सीता देवी का जन्मस्थल है। उनके शब्दों ने मुझे रोमांचित कर दिया और तुरंत चल दिया। काठमांडू में मुझे जनकपुरी जाति एक जर्जर बस में स्थान मिल गया। घंटों बीत गए। बस हिमालय के पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों के पार करते हुए एक घने जंगल में पहुंची, जहां मैंने एक जंगली गेंडे को चरते देखा। जनकपुर पहुंचकर मैं सबसे पहले विहार कुंड पहुंचा, जो एक शांत खुले क्षेत्र में पुराने वृक्षों, विलक्षण मंदिरों और एक आश्रम से घिरा था। वहां मुझे गुरु श्री वेद जी के सम्मुख लाया गया। वे एक अधेड़ साधु थे और उनके चेहरे और सिर पर छोटे सफ़ेद बाल थे। वे अतिशय दयालु थे। उन्होंने मुझसे अपने आश्रम में रुकने का अनुरोध किया और मेरे लिए निःशुल्क दाल चावल प्रसाद की व्यवस्था की। श्री वेद जी ने मुझे बताया कि शास्त्रों में जनकपुर मिथिला के नाम से जाना जाता है और रामायण में इसकी महिमाएं गाई जाती हैं। रामायण बताती है कि ये यज्ञ की तैयारी में महाराज जनक हल जोत रहे थे और धरती से गर्भ से सीता माता ठीक हल के नीचे प्रकट हुई। उनका नाम जानकी पड़ा, राजा जनक की पुत्री। मिथिला में श्रीराम और सीता देवी पहली बार मिले और यहीं श्रीराम ने शिवजी का महान धनुष तोड़कर स्वयंवर में सीता जी का हाथ जीता। अब तक मेरे लिए पृथ्वी पर भगवान के अवतार लेने की कथाएं पूर्णतः सत्य हो गई थी। मुझे पुलकित देखकर करुण हृदय श्री वेद जी ने मुझे भारत के दो महानतम ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अंग्रेजी संस्करण भेंट किए। वे दोनों मोटे ग्रंथ थे। प्रतिदिन प्रातः निकट के कुंड में स्नान के पश्चात ध्यान कर मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनका अध्ययन करता। मैंने पाया कि रामायण रोमांच, प्रेम, त्रासदी, शूरवीरता, भय, हास्य और युद्ध से भरी थी, किंतु उसमें इन सबसे अधिक भी कुछ था। ये सभी प्रसंग भक्तिभावना में एकजुट होकर पाठक के हृदय में भगवत प्रेम जगा देते थे। जब मैंने कुछ सेवा करने की इच्छा प्रकट की तो श्री वेद जी मुस्कुराए। तुम्हें अध्ययन करते और आनंद से प्रसाद पाते देख मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है। इससे बड़ी सेवा मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ। एक दोपहर में मैं धूल भरे मुख्य मार्ग पर बैठा था। पूरे दिन मैंने वहां से एक भी कार या ट्रक को गुजरते नहीं देखा। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जनकपुर में विशाल नेपाली हाथी यातायात के आम साधन थे। हाथी की पीठ पर रखा एक विशाल बक्सा रस्सी द्वारा उसके पेट से बांध दिया जाता। उसका महावत, जो अधिकतर छोटा बालक होता था, हाथ में लकड़ी लिए हाथी की गर्दन पर बैठ जाता। हर हाथी के गले में पीतल की भारी घंटा लटकती थी, जो झूलते हुए निरंतर बजती रहती। हाथी की चाल राजसी और आत्मविश्वास से भरी दिखती। इस प्रकार अनेक हाथी मेरे सामने चलते हुए निकल गए और साथ में मैं अनेक बैल और भैंसे भी, जो भारी लदे हुए छकड़े खींच रहे थे। स्त्रियां सिर पर मिट्टी के घड़े या टोकरियां उठाए जा रही थी, ऐसा संतुलन बनाकर कि उन्हें हाथ लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यहां तक कि छोटी छोटी लड़कियां भी सहजता से भारी बोझ उठाकर ले जा रही थी। चलते हुए वे सभी मिलकर सीताराम का प्रसन्नतापूर्वक गुणगान कर रही थी। इन लोगों के शांतिप्रिय जीवन ने मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंचाया। मैंने प्रार्थना कही कि जनकपुर कभी न बदले। जनकपुर के बीचों बीच एक कुंड के निकट अनेक मंदिर हैं। उनमें से दो प्रमुख हैं, जानकी मंदिर और राम मंदिर। एक दिन राम मंदिर के प्रांगण में मुझे एक साधु मिला, जो लगभग 50 वर्ष की अवस्था का था और मंदिर के पास एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसकी लंबी जटाजूट दाढ़ी और बाल थे तथा साधु का चोला पहने वो शांत और पावन दिख रहा था। सैकड़ों लोग उसका आशीर्वाद लेने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब वे आगे पहुंचते तो वो उदारता से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देता। उसके आशीर्वाद की इच्छा से मैं भी पंक्ति में खड़ा होकर उसके पास पहुंचा और अन्यों के समान ही झुक गया। मुझे देखकर चकित उसने मुझे अपने पास मंच पर बैठने के लिए संकेत दिया। ये मुझे अपना परम सौभाग्य लगा। एक के बाद एक श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए उसने बीच में ही मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? अमरीका। तुम अपने अमीर देश को छोड़कर गरीब भारत में क्यों आए? भगवान की खोज में। वो एक अधेड़ स्त्री पर मुस्कुराया, जिसने उसके आशीर्वाद देते हाथ के नीचे अपना मस्तक झुकाया था। तुम साधु क्यों बन गए? मुस्कुराते हुए उसने पूछा। ज्ञान प्राप्ति के लिए। मेरे शब्द सुनकर उसका मुंह बिगड़ गया, मुस्कान उड़ गई, त्योरियां चढ़ गई और आवाज भद्दी हो गई। उसके बदले तेवर देखकर मैं स्तब्ध हो गया। तुम मूर्ख हो, वो क्रोध से बोला। पक्के मूर्ख, सुना तुमने? मूर्ख, मूर्ख, महामूर्ख। मैं जानता था कि मैं मूर्ख हूं। शायद वो मुझे ज्ञान देना चाहता था, इसलिए मैंने विनीत भाव से पूछा, महाराज जी, कृपया मुझे उपदेश दें कि मैं कैसे प्रगति कर सकता हूं। झुंझलाकर वो चिल्लाया, मैं 30 साल से साधु की तरह जी रहा हूं। जानते हो मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। साधु के मेरे पूरे जीवन में मुझे केवल सड़े दाल चावल मिले हैं। एक महिला ने नवजात शिशु को आशीर्वाद के लिए आगे किया, अमरीका धन और ऐश्वर्य से भरा देश है। वो शिशु के सिर पर हाथ फेरते हुए फिर से मुझ पर चिल्लाया, अमेरिका में भोग करने के लिए सबसे सुंदर स्त्रियां हैं। अमेरिका में बड़े बड़े आरामदायक घर और गाड़ियां हैं। अमेरिका में अच्छे कपड़े और खाना पीना है। अमेरिका में सबसे अच्छे टेलीविजन और सिनेमा हैं। आंख बंद कर उसने आह भरी, ओह काश मेरे पास अमेरिका के मज़े होते। अब उसकी आंखें मुझ पर अंगारे उगलने लगीं। लेकिन तुमने वो सब छोड़ दिया, किसके लिए? दाल चावल के लिए? तंग आ गया हूँ मैं दाल चावल से। तुम इस गरीबी से भरी घटिया जगह पर भगवान ढूंढने आए हो, मूर्ख हो तुम। कोई भगवान भगवान नहीं है, सुन रहे हो तुम? कोई भगवान नहीं है। अपने महान देश लौट जाओ और मजे करो। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी और दुख ही दुख भोगोगे। वो ऐसे शब्द उगल रहा था, सैकड़ों प्रशंसक उसकी पूजा कर रहे थे, उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। पूरा समय जब वो मुझे डांट रहा था, उसकी खुली हुई हथेली भगवान से डरने वाले उन मासूम लोगों को आशीष दिए जा रही थी। वे उससे ईश्वर का आशीर्वाद मांग रहे थे, जबकि वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहा था। लोग एक ज्ञानी पुरुष के रूप में उसका आदर कर रहे थे, जबकि वो अपने जीवन की दयनीय स्थिति के बारे में बोल रहा था। हक्का बक्का मैं वहां से चल दिया। भगवान ने मुझे अभी जो दिखाया था उसे समझने के लिए मेरा मन संघर्ष करने लगा। वो व्यक्ति सही कह रहा था, अमेरिका धन ऐश्वर्य की भूमि है, लेकिन मेरा मन एक आरामदायक जीवन से उब चुका था। इसके विपरीत मुझे लगा कि मैं एक ऐसे मार्ग पर चल रहा था जो कभी सरल और सुखद तो कभी कठिनाइयों से भरा था, परंतु वो यात्रा एक ऐसी महान निधि की खोज में थी कि जो इस भौतिक जगत द्वारा दी जाने वाली किसी भी वस्तु से कहीं श्रेष्ठ थी। यदि वो व्यक्ति भौतिक जगत का सुख भोगना चाहता है तो क्यों नहीं वो ईमानदारी से कुछ काम करता। इसके विपरीत वो एक साधु का ढोंग रचाकर मासूमों को धोखा दे रहा था। संसार में सदैव ही असली और नकली लोग रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि धर्म में पाखंडता ने लोगों की श्रद्धा को खंडित किया है। एक साधु की पहचान हमेशा बाहरी वेशभूषा से नहीं की जा सकती। भगवद्गीता सिखाती है कि वैराग्य एक आलसी व्यक्ति के लिए नहीं है जो काम नहीं करता, अपितु उसके लिए है जो भक्ति भावना से कर्म करता है। मैं उन सब लोगों के विषय में सोचने लगा जिनसे मैं मिला था और जो भक्ति भावना से कार्य कर रहे थे। मैं प्रार्थना करने लगा कि मैं उनके समान बन पाऊं। मुझे वे शब्द स्मरण हो आए जो मैंने बंबई में श्रील प्रभुपाद के मुख से सुने थे। गली में झाड़ू लगाने वाला ईमानदार भंगी एक ढोंगी साधु से कहीं श्रेष्ठ है। फिर मैंने उस बेचारे व्यक्ति के विषय में सोचा जो साधु बनने का ढोंग कर रहा था। उसका बुरा कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है और वो प्रतिदिन उसे पेट भरकर दाल चावल खिला रहा था। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है।